वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता थारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 5 पृष्ठ संख्या 402 सब मैंने कर लिया। बोलिए। क्लेशः अधिकतरः तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां अव्यक्ता गतिः दुःखं देहबद्धिः अवाप्यते। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देह बंधिर वाप्यते। क्लेशः कष्ट अधिकतरः अत्यधिक है। तेषां उन अव्यक्त अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतसां मन वालों का अव्यक्त अव्यक्त की ओर ही निश्चय ही गति ही प्रगति दुःखम दुख के साथ देहवद्भिः देहधारी के द्वारा अवाप्यते प्राप्त किया जाता है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जय धागा लगाकर प्रार्थना निकालिए। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक तरस के साम क्लेश ज्यादा है उनको। किनको क्लेश ज्यादा मिलता है? अव्यक्त आसक्त चेतसाम जिनका चित्त निराकार में आसक्त है जिनका चित्त निराकार में आसक्त है उनको क्लेश ज्यादा है ना। तो भगवान बात कर रहे हैं निराकार वादियों की। जो निराकार वादी है बात नहीं तो जो निराकार में जिनका चित्त आसक्त है उनको क्लेश ज्यादा प्राप्त होता है। अव्यक्त ही गतिर दुःखं देह बंधिर वाप्यते। अव्यक्त की जो गति है वो देहधारियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। तो भगवान तुलना कर रहे हैं साकारवादी और निराकारवादियों के बीच में। जो साकारवादी हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के अर्चन ग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से और कई प्रकार की सेवा करते हैं। तो उनके मार्ग में बड़ी सरलता है। उनके मार्ग में बहुत सुख है, सुखपूर्वक प्राप्त करते हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं दुख पूर्वक प्राप्त करते हैं, जो निराकार मानते हैं भगवान को और मंदिर में नहीं आते, मंदिर में भगवान को प्रणाम नहीं करते, तो उनको भगवान की प्राप्ति होती है लेकिन बहुत दुख उठाना पड़ता है उनको, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद की। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के लोग प्रभुपाद बताते हैं। एक निराकारवादी है तो वे क्या कहते हैं, मंदिर में क्यों जाते हो, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाते हो, आप समझे। अगर मंदिर में आते भी हैं तो वे ज्ञान योगी जो है भगवान को सीमित समझ करके, कि मंदिर में जो भगवान खड़े हैं ये तो सीमित हैं, तो जो सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर है उससे उसकी तुलना में ये कम महत्वपूर्ण है। मंदिर में जो भगवान है उनको महत्व नहीं देते हैं और प्रणाम नहीं करते हैं, झुकते नहीं हैं भगवान के आगे, है ना। तो उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत कष्ट है, उनको बहुत कष्ट मिलता है ना। और प्रणाम और दुख के समन्वय, अगर भगवान को प्रणाम करें नमस्कार करें है? कि यही जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और यहां पर खड़े हैं और इतनी कृपा करी है उन्होंने कि अर्चा विग्रह के रूप में भी वो प्रकट हुए हैं मेरे सामने है? उनकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की कृपा देखता है तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान योगी हैं, जो निराकारवादी हैं, सब जगह व्याप्त हैं, है ना, तो फिर वो मूर्ति, ये तो मूर्ति है, ये जो है भगवान नहीं है, ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है, लकड़ी के भी ऐसा विग्रह है ना, तो पत्थर लकड़ी मानते हैं, ये भगवान नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान योगी हैं ये कष्ट पाते हैं, अपना कष्ट बढ़ा लेते हैं भगवान के क्लेशों अधिक तरस, ज्यादा कष्ट अपना बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रार्थना करने की भी भावना नहीं होती है कि अपने को छोटा माने भगवान के सामने और अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें, ये भी भावना नहीं होती उनकी, इसलिए कष्ट ज्यादा मिलता है। लेकिन जो भक्त हैं उनके अंदर दीनता होती है, ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वा दैन्यप्रियत्वाच, दीनता होती है भक्त के अंदर, इसलिए उसके कष्ट मिट जाते हैं। जब भक्त ये स्वीकार कर लेता है कि भगवान जो है इतने दयालु हैं कि मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो मेरे पापों को मिटाएंगे, मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, तो उसका रास्ता बड़ा सरल हो जाता है, उसके दुख मिट जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, निराकार है, निर्गुण है, तो उसमें वो ये गुण ही नहीं स्वीकार करता कि भगवान जो है भक्त वत्सल है और दीन दयाल हैं, दीन पर दया करने वाले हैं, तो ना तो वो दीन बनना चाहता है ना भगवान को दीनों पर दया करने वाला स्वीकार करता है, तो क्या होगा, कष्ट बढ़ेगा, है कि नहीं। वो निर्गुण मानता है कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, जबकि भगवान में दिव्य गुण है, दीनों पर दया करने वाले। अगर भगवान दीन पर दया करने वाले हैं और आप दीन हैं तो फिर क्या कष्ट, फिर तो कोई कष्ट ही नहीं है। तो भगवान जो है ना स्पष्ट कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरीशी, अगर मुझ में चित्त लगाओगे, कृष्ण अगर चित्त लगाओगे तो कृष्ण चित्त लगा, निराकार नहीं, कृष्ण चित्त लगाओ, कृष्ण की जो मुस्कुराहट है ना, कृष्ण की जो मुस्कुराहट है, तो उसको बताया गया कि आपके दुख के जो अश्रु हैं उनका समुद्र सुखा देगी। जो दुख के आंसू आपने बहाए हैं उनका एक समुद्र बन चुका है। कृष्ण मुस्कुराते हैं तो वो समुद्र सूख जाता है ना। लेकिन ये निराकारवादी इतने अभाग्य हैं कि कृष्ण की मुस्कुराहट का सुख नहीं लेना चाहते। कृष्ण के जो है जो रूप, कृष्ण का जो गुण है, कृष्ण के गुण है वो स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो अपने कष्ट और बढ़ाओ। इस प्रकार से अपनी मूर्खता से अपने कष्ट और बढ़ाते हैं। तो ज्ञान योगी कहलाते हैं लेकिन वास्तव में उनका ज्ञान अधूरा है। वो समझते हैं कि भगवान अगर जो है निराकार हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं तो एक स्थान में सीमित नहीं हो सकते। लेकिन क्यों नहीं हो सकते भगवान एक स्थान में सीमित? अगर भगवान सर्वगुण संपन्न है, अगर भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है तो फिर जो है ना वो एक स्थान में सीमित भी क्यों नहीं हो सकते, असीमित होते हैं। इस तरह से कृपा लिखते हैं आगे। यहां पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। हाँ, देहधारी के लिए स्वाभाविक क्यों? क्योंकि देहधारी जीव अपने देह की सेवा करता है, स्वाभाविक है अपने देह की सेवा करता है, जैसे खाना है, सोना है, अपनी सुरक्षा है ना, हर कोई अपने लिए सोचता है। तो अगर इसी प्रकार से भगवान के लिए सोचता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। तो भगवान को भी वो खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, भगवान की सुरक्षा करता है। आपको ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, तो भगवान के ऐसे विग्रह को भी गर्म कपड़े पहनाता है भक्त, है कि नहीं? आप जो है स्वच्छ रहना चाहते हैं और सजना चाहते हैं तो भगवान को भी वो स्वच्छ करता है, भगवान को सजाता है, भगवान का श्रृंगार करता है ना। तो क्योंकि आपकी देह की आवश्यकताएं हैं उसी प्रकार से आप भगवान भी वो आवश्यकताएं मान करके और आप भगवान की सेवा करते हो तो कितना आसान होता है कि नहीं? आप भूखे हैं तो आपको चिंता होती है कि भगवान भूखे हैं, है ना, तो समय पर भोग लगाना है, भगवान को ठीक समय पर जगाना है, ठीक समय पर सुनाना है, ठीक समय पर भोग लगाना है, है ना, तो एक चिंता उसको पैदा हो जाती है भगवान के लिए, है कि नहीं? गर्मी लग रही है तो भगवान को पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, तो मंदिर में कूलर लगाते हैं। जाड़े हैं तो आपको जाड़ा लगता है ना, तो भगवान को भी जाड़ा लग रहा है तो हीटर लगाते हैं मंदिर में, है कि नहीं? तो देहधारी के लिए जो है भगवान की जो पूजा है, सेवा है, ये बड़ी स्वाभाविक है। आपको प्यास लगती है तो भगवान को प्यास लगती है, तो भगवान को भी पानी रखते हैं, है कि नहीं? और भगवान भी भक्ति की इस प्रकार की सेवाओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान शिकायत करते हैं कि मुझे ज्यादा गर्म भोजन दिया है तुमने, कभी शिकायत करते हैं मुझे ठंडा भोजन दे दिया है तुमने, भगवान शिकायत करते हैं। कभी कभी भगवान मांगते हैं कि मुझको ये चीज खिलाओ, मुझको वो चीज खिलाओ, है कि नहीं? सनातन गोस्वामी से भगवान कहते हैं तुम्हारे जो सूखे सूखे तिक्कड़ हैं ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरते, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। तो इस तरह से भगवान जो है देहधारी की तरह ना। तो जैसे आपको जो है कुछ पसंद है कुछ पसंद नहीं है, उसी प्रकार भगवान को भी कुछ पसंद है कुछ पसंद नहीं है, है ना? तो भगवान फिर और आपकी सहायता करते हैं जानने में कि भगवान क्या चाहते हैं। और फिर जो भक्त है अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, है ना? तो देहधारी के लिए जो है बहुत स्वाभाविक है भगवान की सेवा करना, भगवान को अपने आश्रित मान करके। भगवान भी आश्रित हो जाते हैं भक्ति के। माधवेंद्रपुरी से भगवान कहते हैं माधव इंद्रपुरी, कई सौ सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जमीन के नीचे दबा हूं, बहुत गर्मी लग रही है, मुझको निकालो। अब देखो भगवान खुद निकल नहीं सकते, जमीन के अंदर दबे हैं, और माधवेंद्रपुरी से कहते हैं कि मैं जमीन के अंदर दबा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कई सौ सालों से, और मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे निकालो। भगवान कितने आश्रित हैं, और कहने तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। कुछ मुसलमानों के जब आक्रमण था, तो जो पुजारी जो मेरी पूजा करता था, उसने मुसलमानों के आक्रमण के भय से कि मुझे खंडित कर देंगे, मुझे जमीन के नीचे दबा दिया। तो कई सौ साल हो गए हैं तब, जब से मैं दबा हूं जमीन के अंदर से, और मैं गर्मी लग रही मुझे बहुत, निकालो मुझे। और माधवेंद्रपुरी को जो है ना भगवान सपने में ले जाते हैं उस स्थान में, किस स्थान में हूं मैं। वो स्थान इतना बीहर था, इतने कांटे कांटे थे, कई सौ सालों से वो तो बिल्कुल वो हो गया था, कोई जा नहीं सकता। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जागे तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने सपना दिया, और जो स्थान बताया था उस स्थान में तो जा नहीं सकते, तो वो तो सपने में ले गए थे भगवान, सपने के शरीर में ले गए थे कि इस स्थान में मैं हूं, दबा हुआ। अब इस शरीर से जा भी नहीं सकते उस स्थान में, तो पास के जो गांव वाले थे उनको बुलाया माधवेंद्रपुरी ने, और कहा कि देखो गोपाल जी दबे हैं यहां पर, ये रास्ता कांटे कांटे हैं, सब साफ करो। तो कुल्हाड़ी लेकर के वहां के जो है जो आदिवासी लोग थे, अशिक्षित थे, उन्होंने रास्ता साफ किया, रास्ता बनाया, कांटे झाड़ झंखाड़ सब काट कूट करके अलग किया, रास्ता बनाया, और माधवेंद्रपुरी के कहने के अनुसार उस बिंदु पर खुदाई की जहां सपने में भगवान ने बताया। और जैसे खुदाई की तो कुछ जो ना फुट नीचे जो है एक मनुष्य के आकार का जो है ना भगवान का अर्थ विग्रह मिला। माधवेंद्रपुरी के फिर उनको निकलवाया। देखो तो देहधारी को जैसा गर्मी और ठंड का अनुभव होता है, ऐसे भगवान को होता है, और भगवान अपने अंदर वो महसूस करते हैं, जबकि भगवान के लिए कुछ भी ठंड और गर्मी नहीं है, तो भी भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए वो अपने अंदर स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है। फिर 108 जो है ना कलश ठंडे जल से भगवान का स्नान कराया माधवेंद्रपुरी ने, कि कई सौ सालों की गर्मी है तो दूर हो जाए। नहीं, इतने के बाद भी फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरी गर्मी दूर नहीं हुई, कई सौ सालों की गर्मी है मेरे शरीर में, तो तुम्हारे 108 कलश ठंडे पानी का क्या करेंगे, मेरे लिए मलाई चंदन लाओ पूरे शरीर में लगाने के लिए, मलाई चंदन का लेप करूंगा, है ना, 40 किलो चंदन घिस घिस करके मेरे शरीर में लगाओ। 40 किलो चंदन, 40 किलो चंदन घिसते रहो और लगाते रहो मेरे शरीर में। तो फिर माधवेंद्रपुरी भगवान की इस आज्ञा को जान करके पैदल जाते हैं जगन्नाथपुरी, और मलाई चंदन लेके आते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं, प्रेम का संबंध बनाते हैं, है ना। तो ये रूपा लिखते हैं कि देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है, है? क्या भगवान की सेवा करना स्वाभाविक है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ना। तो जैसे अपना घर है, अपना परिवार है, उसी प्रकार से भगवान को भी जो ना उसमें भक्त शामिल कर लेता है, अपने घर और परिवार में शामिल कर लेता है। तो भगवान को जो है अपना पुत्र मान करके भी भक्त जो है भगवान से संबंध जोड़ता है। कोई भगवान को अपना जो है भाई मान लेकर के भगवान से संबंध जोड़ता है। भगवान को कुछ भी मान लो, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है ना। तो ये जो है भगवान की इतनी कृपा है, भगवान निराश नहीं करते, जो भी चाहो भगवान को मान लो, अपना पिता, अपना भाई, अपना मित्र, जो कुछ चाहो मानो, और भगवान तैयार है हर चीज में। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। मतलब अंग्रेजी में प्रभुपाद ने कहा आइडल वर्शिप नहीं है। आइडल वर्शिप का मतलब जानते क्या होता है? वो आइडल होता है जैसे कि उसको बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। तो वो जो है ना, जैसे पार्क में किसका है वो काली काले पत्थर का, लाला लाजपत राय का है, है ना, महात्मा गांधी का भी है। तो कहीं पर खुले स्थान मतलब इस तरह से बना दिया है,
अम्बेडकर का भी,
हाँ, तो उनका जो है बना दिया, तो साल में एक बार जो है ना उनकी धुलाई वुलाई कर देते हैं, है? और फिर साल भर जो है उनके सिर में कबूतर बैठ के बीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की नहीं है ये मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा इस प्रकार की नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं, अर्चा, श्री विग्रह आराधना, श्री विग्रह आराधना, भगवान के श्री विग्रह की आराधना, भगवान की ये जो है ना अर्चा के रूप में भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है, प्रकट हुए हैं अर्चा विग्रह के रूप में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चित्र के रूप में भी अगर भगवान की पूजा करें तो भी वो भौतिक नहीं है, तो भगवान जो है भक्त की पूजा स्वीकार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, चित्र में भी प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थान में हैं जहां भगवान का अर्चा विग्रह नहीं है, तो आप जो है ना भोग लगा सकते हो, चित्र में भी भोग लगा सकते हो और कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, है ना, चित्र में भी भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। आगे यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, अब ध्यान से सुनिए कृपा क्या लिखते हैं। एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें भी हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। यहां प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं किस चीज का, पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स जो है, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्वीकृत है ना, उसमें हम चिट्ठी डालते हैं और आपकी चिट्ठी पहुंच जाती है, हजारों मील दूर भी पहुंच जाती है आपकी चिट्ठी, है ना। तो इसी प्रकार से जो भगवान के मंदिर हैं, तो भी उसी प्रकार से हैं, मतलब लेटर बॉक्स जैसे हैं। तो भगवान अपने धाम में है, भगवान अपने धाम में है, और लेटर बॉक्स में आपने चिट्ठी डाली तो आप जो भी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाता है, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये जो लेटर बॉक्स है, ये मतलब ऐसे जल वस्तु नहीं है, जैसे कि वो जो लेटर बॉक्स होता है वो तो जड़ है, लेकिन यहां भगवान का साक्षात अवतार हुआ है। एक दृष्टि से समझाने के लिए प्रभुपाद ने ये तुलना की है लेटर बॉक्स से, लेकिन फिर भी पूरी पूरी तरह से लेटर बॉक्स आप नहीं कह सकते। तो क्योंकि लेटर बॉक्स अलग है और वो व्यक्ति अलग है जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो लेटर बॉक्स है ये स्वयं भगवान जो है अपने को प्रकट करते हैं हर्षा विग्रह के रूप में, है ना। तो आगे कृपा लिखते हैं, इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। कितना अच्छा रूप बदलते हैं। तो आप खुद ही अपने लिए कष्ट पैदा करते हो, क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो क्या करता है, भगवान को नमस्कार करता है। लेकिन जो निराकारवादी है वो भगवान को कभी नमस्कार नहीं करता, वो भगवान को नमस्कार नहीं करता। तो फिर समस्या बन जाती है कि नहीं? जैसे कि हमने कहा प्रणाम और दुख के संबंध, भागवत का एक श्लोक है कि तो उनको प्रणाम करने से आपके दुख दूर हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करने। लेकिन वे भगवान को प्रणाम नहीं करते निराकारवादी। क्यों प्रणाम नहीं करते? क्योंकि कोई रूप ही नहीं। आप समझे ना, भगवान का जब रूप नहीं मानते हैं तो फिर भगवान को प्रणाम नहीं करते, है ना। और यहां भगवान की महिमा का श्रवण करता है भक्त। भगवान की महिमा अनंत है, जितनी श्रवण करो कभी समाप्त नहीं होती भगवान की महिमा, है ना। लेकिन वो भगवान की महिमा नहीं श्रवण कर सकता, क्यों? हाँ, क्योंकि कोई रूप ही नहीं, कोई गुण ही नहीं, तो इसलिए उसका कष्ट बढ़ जाता है। और जो भक्त है वो भगवान को भोग लगा करके भगवान का जो चिष्ट है प्रसाद है वो खाता है, है ना। जो निराकारवादी है वो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि उनका रूप ही नहीं है, उनका मुंह ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे? भगवान का वो क्या कहता है कि ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है भगवान के, ना भगवान खाते हैं ना देखते हैं ना सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से वो फिर भगवान को भोग नहीं लगा रहा, जबकि भक्त जो है भगवान का भोग लगा करके बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाता है, आनंद लेता है, है ना। प्रभुपाद जी कि भी लोग इतना तकलीफ उठाते हैं, है ना, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मैं तो एक गुलाब जामुन खाऊंगा और भगवान के धाम में जाऊंगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। तो जो भक्त हैं तो वो भगवान को अच्छा भोजन बना करके भोग लगाते हैं और फिर उनको खाने को मिलता है, क्योंकि जैसा अच्छा अच्छा भोजन मालिक खाता है तो नौकर को फिर बाद में मिलता ही है कि नहीं। इसलिए भक्तों को जो ना अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, जबकि निराकारवादियों को खाली रूखी सूखी रूखा सूखा भोजन मिलता है, तपस्या करनी पड़ती है ना। तो इसलिए कष्ट मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उनको कष्ट मिलता है। और हाँ, तो ये सब जो ना जो कार्य हैं ये भक्ति में बहुत आसान हो जाते हैं। तो प्रबलते हैं, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां ये कहा गया है यदि अंततः भगवान के शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन में उठाता रहता है तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः यहां पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। हाँ, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें बहुत अच्छा बताया गया है, तेसाम केसल ए विशिष्टते नाने तथा सूर्य तुषार घाती नाम, है ना, केसल ए विशिष्टते श्रेय कृतिम भक्ति मुदस्यते विभो, श्रेय कृतिम भक्ति मुदस्यते विभो, क्लिशंत ये केवल बोध लब्ध है, तेसाम असो क्लेशल ए विशिष्टते नाने तथा तू थूल तुषार घाती नाम। तो जैसे यहां पर भगवान के क्लेश, तो भागवत में बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि श्रेयाकृतिम भक्ति मुदस्यते विभो, आपकी जो है कल्याणकारी जो भक्ति है उसको छोड़ करके क्लिशंत ये केवल बोध लब्ध है, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, यानी भक्ति के बिना जो ज्ञान है, भक्ति के बिना जो है केवल ज्ञान, भक्ति के बिना केवल ज्ञान का मतलब क्या है, कि हम जो है भगवान है या हम भगवान बन जाएंगे और तकलीफ उठाते हैं तो उनको क्या मिलता है, तकलीफ ही मिलती है। तेसाम असो क्लेश ले विशेष, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, शेष बचता है, बाकी सब चला जाता है, मिलता क्या है उनको, खाली क्लेश मिलता है। नाने तथा स्थूल तुषार मुखाति नाम, और कुछ नहीं मिलता उनको, क्लेश के सिवा और कुछ नहीं मिलता, जैसे स्थूल तुषार मुखाति नाम मतलब थोथा धान कूटो आप तो क्या मिलेगा आपको, क्लेश ही मिलेगा कष्ट ही मिलेगा, बस उसमें दाना थोड़ी है, उसमें दाना तो है ही नहीं, और कूटते रहो और कूटते रहने से पता नहीं चलता है कि वो जो है ना आप कूट रहे हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कूटते रहो कूटते रहो क्या मिलेगा, कष्ट कष्ट मिलेगा। और करते रहो करते रहो, उसमें धान है ही नहीं, थोथा धान, थोथा क्या बोलते हैं, भूसी बोलते हैं, धान की भूसी, कूटते रहो कूटते रहो, उसमें चावल है नहीं, बीज है ही नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्लेश जो यहां पर है भागवत में उसी को समझाया गया है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, समझ रहे क्या, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा, ये शुद्ध ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है केवल बोध है, तो उसमें वो क्या सोचते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही आत्मा है, हम सब अलग अलग आत्माएं नहीं है, तो ये केवल ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान क्या है, प्रभु लिखते हैं, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में सदाकार होना चाहता है तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ये चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती, आनंद नहीं मिल सकता है। आगे हाँ, ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। हाँ, ये जो है ना, जो बात जो है ना दिमाग में घुस जाती है, है ना, तो जल्दी निकलती नहीं है, है ना। इसलिए कहा है चैतन्य महाप्रभु ने, मायावादी भाष सुन ले होए सर्वनाश, सर्वनाश, जो मायावादी भाष है सुनता है तो सर्वनाश हो जाता है, तो दिमाग में जो है ना एक विचार जो बैठ जाता है तो वो आसानी से निकलता नहीं, देर काफी समय लगता है दिमाग से निकलने में। तो आगे प्रबल हैं, अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है, प्रत्येक जीव अंततः स्वतंत्र है और उसे यह चित्र है समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसकी आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है, मनुष्य को चाहिए किस विधि को ना अपनाए। देहधारी है, हम शासक रूप से देहधारी हैं। प्रत्येक जीव का अपना आध्यात्मिक देह है, आध्यात्मिक शरीर है हर व्यक्ति का। वो आध्यात्मिक शरीर आप नहीं जानते हैं कि आपका क्या है, लेकिन वास्तव में आपको उसे जानना है। भगवान की लीला में प्रत्येक जीव का अपना एक शरीर है जिसे स्वरूप कहते हैं, और वो सच्चित आनंद विग्रह है, वो है सच्चित आनंद है वो शरीर, और वो भगवान की सेवा के लिए होता है ना। तो वो आपको जानना है। तो प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि जो अव्यक्त की प्राप्ति है ये अपनी आत्मा की प्रकृति नहीं है वास्तव में, इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। 24 घंटे कृष्ण की सेवा। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अगर भक्ति की उपेक्षा की आपने, है ना, तो फिर आगे चल करके नास्तिक होने का संकट रहता है। नास्तिक मतलब ना अस्ति, नास्तिक का मतलब ना अस्ति मतलब नहीं है भगवान। जो निराकारवादी हैं वो एक प्रकार से नास्तिक बन जाते हैं। वो कहते हैं निराकार निराकार, है ना, कि उनका आकार नहीं है, आकार नहीं है, और फिर आगे चल करके उनके दिमाग में निराकार भी खत्म हो जाता है, निराकार फिर हो जाता है शून्य, शून्यवादी। अब शून्य का मतलब क्या है? नास्तिक। भगवान को निराकार बोलते बोलते फिर वो क्या बोल देते हैं? निराकार है इसका मतलब नहीं है, नास्ति नहीं है, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निराकारवादी, एक प्रकार से फिर नास्तिक ही होते हैं, है ना। वो भगवान के रूप से फिर द्वेष करने लगते हैं, भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से भी द्वेष करने लगते हैं। तो संकट, नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है ना। तो मंदिर में जो है, जो भगवान की पूजा है और भगवान का गुणगान है, तो इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो है ना, आज के श्लोक में प्रभुपाद समझा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आगे चल करके फिर भगवान कहेंगे, आगे चल करके भगवान कहेंगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा, जो मेरे परायण है सब कर्मों को मुझे अर्पित कर दें। अनन्य नैव योगिन महान ध्यान उपासते, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, उनका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं, भवामि न चिरात्मार, देर नहीं करता हूं, जल्दी ही उसका उद्धार करता हूं, है ना। तो कितनी आसानी है जब भगवान इस समुद्र मृत्यु संसार समुद्र से आपका उद्धार करते हैं, तो कहां कठिनाई है। लेकिन अगर आप जो है अपने आप इस समुद्र को, मृत्यु संसार समुद्र को अगर पार करना चाहते हो, तो कितनी कठिनाई होती है नहीं। तो बिल्कुल सरल है, इस संसार समुद्र को पार करना बिल्कुल सरल है, क्योंकि संसार समुद्र ये क्या बन जाता है, जो कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, तो संसार समुद्र क्या बन जाता है? बत्पद, है ना, समासता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवाम उधिर वत्स पदम परम पदम 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 यदाम तेसाम, है ना। तो जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उनके लिए ये भव सागर, मृत्यु सागर जो है, ये क्या हो जाता है? बसले के खोर के बने छोटे से गड्ढे के समान हो जाता है। बछड़ा जब अपना पैर रखता है तो छोटा सा गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में जो है ना जो पानी होता है उसमें कहां आपको संकट है, उसको पार करने में आपको क्या दिक्कत है कि नहीं, कुछ कोई कष्ट ही नहीं है ना। तो वो समुद्र जो है जिसकी ना तो गहराई का पता है और ना लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, वो समुद्र जो है ना क्या बन जाता है, बछड़े के खुर का बना हुआ गड्ढा, कितना छोटा तो कितना सरल है ना। तो ये संसार समुद्र सूख जाता है ना उनके चरणों की शरण लेने से, तो कठिनाई दूर हो जाती है। तो जो निराकारवादी है अपने प्रयास से मृत्यु संसार सागर को पार करता है और बहुत कष्ट तकलीफ उठाता है, बहुत तकलीफ उठाता है ना। तो इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा करे शशि है ना, अत्यतम अहंकार न श्रोशी विरंग शशि, अहंकार मेरी कृपा से मुझ में चित्त लगा करके मेरी प्रसन्नता से तुम सब कठिनाइयों से पार हो जाओगे, सब कठिनाइयों से पार कर हो जाओगे। अगर अहंकार के कारण नहीं सुनोगे मेरी बात तो नष्ट हो जाओगे है ना। तो फिर अगर गोते भी खाना है इस संसार सागर में तो तो आपकी मर्जी गोते खाओ, लेकिन अगर भगवान की शरण ले लो तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, अहंकार है। वास्तव में जितने भी क्लेश हैं उनका कारण क्या है, अहंकार है। अहंकार के कारण हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारा सम्मान घट जाएगा है ना। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और भक्तों को क्या कहते हैं, ये भगोड़े हैं, ये भगोड़ापन है, तुम संसार से डर करके और मंदिर में भगवान का भजन करते हो, ये तो भगोड़ापन है, और हम साहसी हैं, हम वीर हैं, हम कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो ये क्या है, मूर्खता है। आप कितने भी वीर हो कितने भी साहसी हो समुद्र को पार कर सकते हो नहीं, समुद्र को पार करने के लिए आपको जहाज चाहिए, मजबूत जहाज चाहिए है ना। तो ये मूर्खता है जो कि इस तरह से अहंकार, इसको अहंकार भगवान कहते हैं अहंकार। तो अहंकार के कारण नहीं श्रमण करते हैं, अरे चित्तम अहंकार न सो सचिव शशि, नहीं श्रवण करते। कृष्ण कथा को श्रवण करने में भी आपको अहंकार छोड़ना पड़ता है, आपको स्वीकार करना पड़ता है कि आप मूर्ख हैं, तभी तो आप बैठे हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पुराना भक्त हूं, मैं यहां क्यों बैठा हूं कथा सुनने के लिए, तो आप नहीं सुनते। तो भगवान के अहंकारान न श्रोशसि, अहंकार करण नहीं श्रवण करोगे तो क्या हो जाओगे, विनश्यसि विनश्यसि, नष्ट हो जाओगे। तो इसलिए नष्ट होते हैं लोग, भक्तों का संग नहीं करते है ना, भगवान की शरण नहीं लेते है ना। जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरा कष्ट दूर करो, द्रौपदी ने प्रार्थना की भगवान से मेरा कष्ट दूर करो, तो कृष्ण ने द्रौपदी का क्लेश मिटाया है ना। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय, जो प्रणत है जो भगवान को नमस्कार करता है शरणागत है उसका क्लेश नष्ट कर देते हैं भगवान। तो बस प्रणत पाल, भगवान कहते हैं प्रणत पाल, जो प्रणत है उनके शरणागत है उनका पारण करते हैं भगवान, तो फिर कहां कष्ट है? एक कुत्ता है अपने मालिक के साथ रहता है ना, जो मालिक खाता है वो कुत्ते को भी मिलता है और कितना सुखी रहता है और ऐसा हट्टा कट्टा रहता है और मजे से अपना खाता है सोता है सुरक्षा प्राप्त करता है। और दूसरा कुत्ता है सड़क में घूमता है ना, कूड़ा करकट में जो है भोजन ढूंढता रहता है ना, और दुबला पतला है और फिर कोई उसको डंडा मार देता है, कोई पत्थर मार देता है, तकलीफ आता है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान का अगर श्रवण कीर्तन करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इसी नवे अध्याय में भगवान ने कहा है सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुसुखम कर तुम, करने में बहुत सुख कारक है। यहां पर भगवान का दुख अब देखते हैं, कहते हैं दुखम, यहां दुख कहा है भगवान ने और उसमें कहा सुसुखम कर तुम, सुसुखम बहुत सुख पूर्वक करने में बहुत सुख पूर्वक है। और यहां पर छठवें श्लोक में सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूं, मैं उद्धार करता हूं मृत्यु संसार सागर से, है कि नहीं? ध्रुव महाराज को जो है भगवान ने विमान भेजा, अपने सेवकों को भेजा विमान के साथ कि ध्रुव महाराज को इस विमान में आदर पूर्वक लेके आऊं। ध्रुव महाराज बैठ गए विमान में, बैठ गए है ना, भगवान की कृपा है, भक्त के लिए जो है ना भगवान अपना विमान भेज देते हैं, विमान में बैठ कर भक्त जो है उनके धाम में जाते हैं, है ना। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो वो बहुत कष्ट में था, है? तो भगवान ने गजेंद्र का कष्ट देखा तो जल्दी से गरुड़ पर बैठ करके आए और गरुड़ से उतर करके भगवान जो है जमीन में आए और फिर हाथी और मगरमच्छ दोनों को पकड़ करके बाहर निकाला। सबसे पहला तो कष्ट यही था कि हाथी डूब रहा था पानी में, तो पहले तो दोनों को पकड़ के बाहर निकाला, उसके बाद फिर देखा कि मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा है तो उन्होंने फिर न्याय किया, जैसे न्यायाधीश न्याय करता है ना, तो किसी को फांसी की सजा देता है, तो मगरमच्छ का फिर गला काटा कि ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये अभी भी नहीं छोड़ रहा है, पानी के बाहर भी निकाल दे तो भी नहीं छोड़ रहा है, ये आतंकवादी है, तो फांसी की सजा दी अपने चक्र से उसका गला काटा। इस तरह से वो भी जो हुहू नाम का गंधर्व था तो वो देवल मुनि के साप से मुक्त हो गया, वो गंधर्व लोक में चला गया। और हाथी को क्या दे दिया, अपना श्रम दे दिया, तो बड़ी आसानी से उसने शरीर छोड़ दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई क्लेश नहीं हुआ, और उसको भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ, भगवान जैसा चार भुजाओं का उसको रूप प्राप्त हो गया। और भगवान फिर क्या करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को अपने टू व्हीलर में पीछे बैठा लेता है और चला जाता है, ऐसे गरुड़ में बैठा करके अपने पीछे उसको ले गए वैकुंठ में भगवान जैसे पिता अपने पुत्र को वो देखता है, उसका पुत्र का जो है कहीं मान लो दुर्घटना हो गई सड़क में, और जब पिता को पता चलती है तो अपने टू व्हीलर में आकर के अपने पुत्र को जो ना दुर्घटना स्थल से उठा करके और बिठा करके और ले जाता है अपने घर। जैसे भगवान जो है ना गजेंद्र को जो है ना ले गए अपने साथ, तो भगवान के पीछे भगवान के साथ गरुड़ में बैठ करके और गजेंद्र चले गए भगवान के धाम में, कितनी आसानी से, है कि नहीं? तो इतना आसान है जो है है, अगर आप मान लो भगवान को कि वो दीन वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, और आप जो है विनम्र हो जाओ, आसमान छोड़ दो, दीनता अगर स्वीकार कर लो, है ना, तो जो भक्त हैं वो अपने को बहुत दीन मान करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान को विनम्रता प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, प्रणादपि समीचीन करोरपि सहिष्णुना, है अपने को तिनके से भी ज्यादा नीचे मानो अगर आप अपने कष्टों को दूर करना चाहते हो। और यही समस्या निराकारवादी के अंदर, यही समस्या, वो यही सोचता है भगवान को साकार मानने में उसको दिक्कत यही होती है। जो निराकारवादी है वो भगवान को साकार मानने में उसको दिक्कत यही होती है कि अगर मैं भगवान को साकार मानूंगा तो फिर वो प्रणाम ही करता रहूंगा, नमस्कार करता रहूंगा, मैं बेवकूफ की तरह जो है उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ता रहूंगा, तो ये ठीक नहीं लगता। अभिमान के कारण, अभिमान जो है ना इतना जो है ना कष्ट देने वाला है, कष्ट का कारण अभिमान ही है, इसलिए वो निराकार में आसक्त होता है। वो अगर हम निराकार मानते हैं, कोई रूप ही नहीं है, तो फिर ना तो प्रणाम करने की जरूरत है, ना प्रार्थना करने की जरूरत है, गिर गणाने की फिर जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम महान बन जाएंगे। हम ग्रेट, आई एम ग्रेट, है कि नहीं? तो ये समस्या है, आप महान बनना चाहेंगे, लेकिन वैकुंठ में जो है इतना जो है शुद्ध वातावरण है वैकुंठ में कि किसी के अंदर अभिमान नहीं है। भगवान भी जो है भक्तों के जो है बस में होते हैं, भगवान भी अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं भगवान, है ना, तो वे भी अपने ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है। भगवान में इतना जो ना गुण है, इतनी विनम्रता है कि वे जो है भक्तों के साथ में पिता के जैसा और भक्तों के साथ पुत्र जैसा भी व्यवहार करते हैं, पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, इतना भगवान का जो है ना गुण है। आप अभिमान छोड़ दो तो देखोगे भगवान में और अभिमान शून्य है। जब आप अभिमान करते हो तो भगवान में भी अभिमान हजार गुना। आप अकड़े रहते हो, नहीं प्रणाम करेंगे भगवान को, तो भगवान कहते हैं तू करता है तो मैं भी करता हूं, है ना, है ना, तो इस तरह से और दूर हो जाते हैं भगवान, और तकलीफ मिलती है कि नहीं। और जितना झुकते हैं तो भगवान और ज्यादा झुकते हैं। और जो भक्त हैं भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान फिर इतना मतलब उसका सम्मान करते हैं, उसको कितना सम्मान प्राप्त होता है। दुनिया भर में जहां जाता वहीं पर लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं उसका। भगवान जो है फिर उसकी हर प्रकार से उसका सम्मान बढ़ता है। जैसे प्रभुपाद जी है ना, तो प्रभुपाद जी केवल कृष्ण के जो है ना समर्पित थे, कृष्ण के प्रति जो है समर्पित थे, और प्रभुपाद की कितनी पूजा हुई, प्रभुपाद को कितना लोगों ने सम्मान दिया, और कितने झुकते थे प्रभुपाद के आगे, जहां जाए वहीं पर सब झुकते हैं, सब झुकते हैं प्रभुपाद के सामने। क्योंकि प्रभुपाद ने किसी को ना तो खिलाया पिलाया, ना घूस दी, ना तो पैसे दिए किसी को कि मुझे प्रणाम करो मेरे पैर छुओ, और ना तलवार दिखाई कि मुझे प्रणाम करो तो देखो मेरे हाथ में तलवार है, ना तो ये, तो भी लोग झुकते थे प्रभुपाद के सामने। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के सामने झुकते थे, इसलिए पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थे, तो सब उनको समर्पित होते हैं, सब उनको समर्पित होते हैं। तो ये जो है ना रहस्य है, ये रहस्य है। अगर भगवान को मान लो कि हाँ भगवान में दया है, तो आप जो है ना बहुत लाभ उठा सकते हो। जो निराकारवादी है वो कहते हैं ना भगवान में दया है, ना भगवान का रूप है, ना भगवान में कोई गुण है, तो ठीक है, दया नहीं है तो फिर क्या है भगवान में, निर्दया, निर्दय। तो भगवान को अगर आप निर्दय मान लेते हो तो आपको ही नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आपका ही। अगर भगवान को दयालु मानते हो तो भगवान बहुत दयालु, तो आपको लाभ होगा। भगवान तो तैयार है सब कुछ करने के लिए। अगर आप भगवान की दया देखना चाहते हो तो इतनी दया देखोगे कि अंत ही नहीं मिलेगा भगवान की दया। ये भगवान में दया नहीं देखना चाहते हो तो दया नहीं मिलेगी आपकी, बिल्कुल दया नहीं मिलेगी। भगवान को समझते हो कि कठोर हृदय है भगवान, शून्य है, शून्य हृदय है भगवान, तो पत्थर की तरह कठोर है बिल्कुल, कोई दया नहीं, तो ये समस्या है। जो निराकारवादी हैं वो स्वयं जो है ना भगवान को जो है निर्दयी मान लेते हैं तो फिर तकलीफ पाते हैं। जो भक्त है वो क्या देखता है भगवान के अंदर? दया है ना। और वो अपने को जो ना क्या कहता है, हरे मत समो पातकी नास्ति भूमो तथा तो समो नास्ति पापापहारी इति इति तुम समत्वा जगन्नाथ है देवो यथेच्छा भवित्ते तथा माम कुरुत्वम। कि हे हरि, मेरे समान इस पृथ्वी में कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं है, तो दोनों की जोड़ी अच्छी मिली। मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं है। इति तुम तो मत्वा जगन्नाथ देव, तो हे जगन्नाथ देव ऐसा मान करके अब तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो, अब ऐसा आप समझ लो। तो भक्त समझा देता है भगवान को कि आप ऐसा समझ लो तो भगवान ऐसा समझ लेते हैं ना। जो निराकारवादी है वो क्या भगवान को समझाता है? भगवान समझ लो कि तुम्हारा कोई रूप नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है, तो भगवान समझ लेते हैं तो आप तकलीफ उठाते हो, लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं तो ये सो दिख तरह से शाम उनको कष्ट मिलता है। तो भक्त ये मान लेता है, तो इसलिए भगवान को बार बार समझाता रहता है, बार बार समझाता रहता है कि आप व्यासा करो, आप व्यासा करो। आज का जो आज की तारीख में जो प्रभुपाद ने जो लिखा है ना पत्र लिखा है, उसमें क्या है प्रभुपाद के
भी दुख है सोचना के और भी बहुत आने
हैं। हाँ, भक्त जो है ना जब ये सोचता है कि मुझे जो दुख मिला है तो ये भगवान की कृपा से कम मिला है, मुझे तो और ज्यादा मिलना चाहिए, ये विनम्रता अगर आ जाए आपके अंदर तो आप देखो कि भगवान की कृपा और आपको मिलेगी। जो भक्त भगवान की कृपा देखने की आदत डाल देता है, हमेशा हर बात में भगवान की कृपा देखने की आदत बना लेता है कि भी भगवान की कृपा है ना, तो फिर उसको भगवान की कृपा और दिखाई देती है, और दिखाई देती है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, वो मानते नहीं भगवान की कृपा, भगवान के अंदर कृपा हो ही नहीं सकती, तो ठीक है नहीं हो सकती है तो फिर भोगो तकलीफ दुर्योधन था वो भगवान को दुष्ट मानता था, तो भगवान ने दुष्टता दिखलाई उसको है ना। तो ये समस्या है,
प्रभुपाद जी ने बोला था कि भगवान को पत्थर मानते हो तो तुम्हें पत्थर ही दिखाएंगे।
तो इस तरह से जो है ना भक्त हैं भगवान भगवान के क्लेश को दूर करते हैं। हाँ, ये भी बात है, भक्तों में जो है एक गुण ये भी है कि भगवान का क्लेश दूर करते हैं। जैसे ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के कष्ट को दूर करना चाहते हैं हमेशा, तो उनका कष्ट हमेशा दूर होता है। जो असुर हैं कृष्ण को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो उनका कष्ट बढ़ता है। जो असुर हैं वो कृष्ण को मार डालना चाहते हैं तो वो मर जाते हैं, उनका विनाश होता है। जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं तो उनकी रक्षा होती है। कृष्ण की कोई रक्षा नहीं करता, कृष्ण कोई विनाश करता है। इन जो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा होती है, और जो कृष्ण को विनाश करना चाहते हैं उनका विनाश हो जाता है। हम लोग आरती उतारते हैं भगवान की, तो ये भी आरती का मतलब क्लेश है वास्तव में। आपने कभी सोचा कि आरती जो उतारी जाती है भगवान की, इसका क्या मतलब है? आरती का मतलब है क्लेश। भगवान का जो क्लेश है वो आप उतारते हो किसमें? ज्योत में, अग्नि में आप भगवान का जो कष्ट है वो उतारते हो। इसके बाद फिर आरती लेते हो अपने सिर में, वो लेकर के अपने सिर में लगाते। क्यों? वो भगवान का जो क्लेश आ गया है उसमें अग्नि में, वो आप हाथ में लेकर के और अपने सिर में ले रहे हो, भगवान का क्लेश ले रहे हो। अब भगवान का क्लेश लेते हो तो भगवान आपका क्लेश ले लेते। आप भगवान का क्लेश जो है अपने सिर में लेते हो, सिर माथे में। भावना यही है कि भगवान को जो भी कष्ट हो वो इसमें आ जाए, चरणों में, चरणों में उतारते हैं, फिर नाभि में उतारते हैं, फिर चेहरे में उतारते हैं, फिर पूरे शरीर में उतारते हैं। जितना भी कष्ट है भगवान को तब आपने उसमें ले लिया। आरती, आरती उतारी है? वैसे हम लोग करते हैं आरती है? आरती की जाती है, लेकिन वैसे आरती की नहीं जाती है, आरती उतारी जाती है और फिर आरती ली जाती है। आप आरती लेते हो अपने आंखों में, सिर में, तो भगवान का जो कष्ट है अपने सिर में और आंखों में आपने ले लिया। और इस तरह से जो भक्त हैं उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये विनम्रता है, जो भक्त हैं वो त्रिनादपि सुनी चेन तिन के सिर नीच होकर के ना भगवान का जो है गुणगान करते हैं, है ना। कृपया तो पाद पंकज सफेद धूलि सदृशं विचिन्तय, अपने चरण कमल के धूल के समान मुझे मान ली, है ना। तो ये है ना अपने को छोटा मान करके कि मैं इसी लायक हूं, भगवान के सामने अपने को तिनके से भी ज्यादा नीच मान करके। जब भक्त जो है भक्ति करता है तो उसका जो है क्लेश दूर हो जाता है, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री राम प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरदाय सीताराम कृष्ण हनुमान की। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम।